नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप प्रशांत कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित। अरुणाचल में भाजपा ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। सिक्किम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग की पार्टी एसकेएम की वापसी। लोकसभा चुनाव को लेकर 4 जून को होने वाली मतगणना के लिए तैयारियां जोर शोर से जारी। भाजपा सांसद रामकृपाल यादव पर हमले की जांच के लिए एसआईटी का गठन, एक आरोपी गिरफ्तार। और राज्य के उत्तर और पूर्वी हिस्सों में हुई बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। अब समाचार विस्तार से। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए आज हो रही मतगणना में ज्यादातर नतीजे आ गए हैं। अरुणाचल प्रदेश में भाजपा ने कुल 60 सीटों में से 46 पर जीत हासिल कर प्रचंड बहुमत से सत्ता में वापसी की है। वहीं भाजपा की सहयोगी दल एनपीपी को 5 सीटों पर जीत मिली है। सिक्किम विधानसभा में 32 में से 31 सीटें जीतकर प्रेम सिंह तमांग की पार्टी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने सत्ता में वापसी की है। वहीं 25 साल सत्ता में रहे पवन कुमार चामलिंग की पार्टी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को करारी हार का सामना करना पड़ा है। पार्टी को केवल 1 सीट पर जीत मिली है। वहीं भाजपा को 1 भी सीट पर जीत नहीं मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में भाजपा पर भरोसा जताने के लिए राज्य के मतदाताओं के प्रति आभार जताया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने सिक्किम विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल करने पर मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग को बधाई दी है। 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर विभिन्न जिलों में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वज्रगृह की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है और आसपास की गतिविधियों पर गहन निगरानी रखी जा रही है। हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सहजिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक मतगणना से जुड़े स्थलों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। बेगूसराय के बाजार समिति परिसर स्थित मतगणना केंद्र में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इधर गोपालगंज के जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सहजिलाधिकारी मकसूद आलम और पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने आज थावे डायट भवन स्थित मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
मतगणना की तैयारी में हम लोग यहाँ पर 6 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है, जिसमें प्रत्येक असेंबली के लिए अलग अलग हॉल रखा है। 14 टेबल ईसीआई के गाइडलाइन 14 टेबल मिनिमम रख सकते हैं, हम लोग उस हिसाब से 14 टेबल एडजस्ट किया। इसके अलावा जो कैंडिडेट से भी आग्रह किया कि अपना अपना काउंटिंग एजेंट वहां पर दे दें, प्रत्येक टेबल पे एक काउंटिंग एजेंट का प्रावधान है। इनके लिए ड्रॉप गेट वगैरह हम लोग रखा है कि कहां तक वाहन जाएगी, कहां तक नहीं जाएगी। 3 गेट हमारे पास है, तीनों गेट को ये मार्क कर दिया है। एक गेट नंबर 1 से कौन कौन जाएंगे, गेट नंबर 2 से कौन जाएंगे, गेट नंबर 3 से कौन कौन जाएंगे, जाएंगे बना के हम लोग सभी काउंटिंग हॉल में काउंटिंग एजेंट के लिए बना दिया, उसी से वन दे जाएंगे। जीत के बाद जुलूस का परमिशन हम लोग नहीं दे रहे हैं। अभी पोलिटिकल पार्टी के लिए बैठक किया था, उनसे आग्रह किया था कि जो जीत तक बहुत ऐसा नहीं के साथ नहीं करें कि जो हारे हुए उनको मन में खुशी हो।
कटिहार नगर के तिलगछिया बाजार स्थित बाजार समिति परिसर में मतगणना केंद्र बनाया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी मनीष कुमार मीणा ने बताया कि सारी व्यवस्था की गई है। श्री मीणा ने कहा कि विजय जुलूस निकालने की इजाजत नहीं होगी।
अभी 6 विधानसभा क्षेत्र का कटिहार लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र है, इनका स्ट्रांग रूम कृषि उत्पादन बाजार समिति में है, वहीं पर सभी का काउंटिंग होगा और काउंटिंग के लिए सुरक्षा का इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन के आरोप में सभी प्रकार का व्यवस्था कर लिया गया है और सभी प्रकार का सुरक्षा से संबंधित व्यवस्था में मुख्य रूप से जैसे बताया 3-लेयर सिक्योरिटी होता है। काउंटिंग हॉल के आसपास में किसी प्रकार का अनऑथराइज वाहन का परमिशन अलाउ नहीं रहेगा और जितने भी मतगणना गणन अभी तक का रहेगा उन सभी का भी पास के आधार पर उनका एंट्री होगा। इस तरह मीडिया बंद होंगे, उन सभी का भी पास के आधार पर एंट्री होगा। इसके अलावा कोई भी अनऑथराइज व्यक्ति का एंट्री उसमें नहीं होगा।
मुंगेर संसदीय सीट के लिए आरडी एंड डीजे कॉलेज में मतगणना केंद्र बनाया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि मतगणना की सभी व्यवस्था की जा रही है।
6 विधानसभा है तो सभी का अपना अपना काउंटिंग रूम है और इसके अलावा पोस्टल बैलेट की गणना होगी। जहां तक ईवीएम का है तो प्रत्येक एसी के लिए 14 टेबल की व्यवस्था की गई है, वहां पर उसकी गणना की जाएगी। और जहां तक राउंड की बात है तो नंबर ऑफ बूथ पर मूलतः निर्भर है, तो टेबल के हिसाब से बूथ निर्धारित होता है और बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके चाहे निर्वाचन अभिकर्ता जो एक है उनको और जो काउंटिंग एजेंट्स हैं इन सभी को हम लोगों के द्वारा पास निर्गत किया जा रहा है। केवल उन्हीं को प्रवेश की अनुमति होगी, किसी को भी मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी, चाहे वो कैंडिडेट हों, चाहे निर्वाचन अधिकर्ता हों और चाहे उनके काउंटिंग एजेंट हों।
लोकसभा चुनाव के सातों चरण सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद अब विभिन्न एजेंसियों और समाचार चैनलों द्वारा दिए गए एग्जिट पोल के आंकड़ों पर चर्चा शुरू हो गई है। अधिकांश सर्वेक्षणों के पूर्वानुमान में एनडीए को 350 से अधिक सीटें मिलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। वहीं इंडी गठबंधन को 150 से 170 सीटें मिलने का अनुमान बताया गया है। इंडिया टुडे, माई एक्सिस, न्यूज 24 टुडे, चाणक्य, एबीवीपी, सी वोटर और इंडिया टीवी सीएनएक्स के सर्वे में एनडीए को 361 से 401 जबकि इंडी गठबंधन को 131 से 166 तथा अन्य दलों को 27 से 45 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया टुडे, एक्सिस, माई इंडिया के अनुसार भाजपा और उसके सहयोगी दलों को 361 से 401 सीटें मिल सकती हैं जबकि इंडी गठबंधन को 131 से 166 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य दलों को 8 से 20 सीटें मिलने की संभावना है। राज्य में लोकसभा की 40 सीटों के लिए जारी सर्वेक्षण के ज्यादातर आंकड़ों में एनडीए को 30 से 32 सीटें मिलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। वहीं इंडी गठबंधन को 7 से 9 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। रिपब्लिक इंडिया की ओर से जारी सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में एनडीए को 37 सीटें मिल सकती हैं जबकि राजद, कांग्रेस, इंडी गठबंधन को 3 सीटें मिलने की संभावना है। आज तक इंडिया टुडे के सर्वेक्षण में बिहार में भाजपा को 13 से 15, जदयू को 9 से 11, लोजपा रामविलास को 5 और राजद को 8 सीटें मिलने की बात कही गई है। एग्जिट पोल के नतीजों पर सभी राजनीतिक दलों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अनुमान के आंकड़े ही बता रहे हैं कि अवसरवादी इंडी गठबंधन मतदाताओं के साथ तालमेल बिठाने में विफल रहा है। उन्होंने कहा कि नतीजों में भी साफ दिखेगा कि जनता ने विपक्ष की नकारात्मक राजनीति को खारिज कर दिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना पर जा सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगली सरकार बनेगी। श्री कुमार ने आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि नतीजों में एनडीए को अपार जनसमर्थन मिलेगा। गौरतलब है कि 7 चरणों के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री श्री कुमार निजी दौरे पर दिल्ली पहुंचे हैं। इस दौरान श्री कुमार के बीजेपी के शीर्ष नेताओं से भी मिलने की संभावना है। राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि इंडी गठबंधन को 295 से अधिक सीटें मिलेंगी। श्री यादव ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए एग्जिट पोल के पूर्वानुमान को नकार दिया। उन्होंने कहा कि जनता ने बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर वोट किया है और इसलिए परिणाम चौंकाने वाले होंगे।
जो बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई का जो दर्द है, उस दर्द के आगे ये कुछ नहीं है। और जब संविधान, आरक्षण, लोकतंत्र खत्म करने की बात आगी तो तेजस्वी बैठने वाला नहीं है, लड़ाई लड़ेगा। और जो जनता का जो मिजाज है, हम शुरू से कहते रहे बिहार चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। जनता का जो मिजाज था उसको हम लोगों ने जाना और 295 मिनिमम इंडिया अलायंस रहेगी। से बिहार में जो है 20-25 सीटों से कम हम नहीं आएंगे।
पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार रामकृपाल यादव पर असामाजिक तत्वों द्वारा हमला किए जाने के मामले में जांच के लिए SIT का गठन किया गया है। वहीं पुलिस ने एक आरोपी विकास कुमार को गिरफ्तार किया है। सिटी SP भरत सोनी ने बताया कि इस मामले में 8 अन्य नामजद और 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि 7वें और अंतिम चरण के मतदान के बाद कल पटना लौटते समय मसौढ़ी के करीब तिनेरी गांव के पास भाजपा प्रत्याशी श्री यादव की गाड़ी पर हमला किया गया था। श्री यादव ने आज संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि हमलावरों ने उनकी जान लेने की कोशिश की थी लेकिन वो बाल बाल बच गए।
जैसे ही मैंने रोड पर निकला 20 से 25 के झुंड में, मुझे पता नहीं था क्या होने वाला। मैं निकला, 3 फायर, थाए थाए गोली की आवाज, मैं तो अस्पताल में लग जा रही कि क्या हो रहा। मेरे साथ वहां के स्थानीय मुखिया के पति और 3-4 और कार्यकर्ता हमको गाइड करने के लिए, गांव में ले जाने के लिए जा रहे थे। जब मेरे पर फायर हुआ तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, क्योंकि मैं नहीं जानता था, लोकल में नहीं था, वहां सब लोगों को जानकारी नहीं थी, सबको जानकार मैं नहीं था वहां के लिए। मेरे लिए आश्चर्यजनक था, फायर हुआ मेरे ऊपर। आज तक 40 साल के इतिहास में कितना भी पक्ष विपक्ष रहा हो, मेरे ऊपर एक ढेला तक नहीं किसी ने।
वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हिंसा के लिए राजद नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि राजद से जुड़े अपराधी तत्वों ने इस हमले को अंजाम दिया।
कई लोग हमारे हॉस्पिटल में भर्ती और स्वयं रामकृपाल जी पर गोली चलाने का काम लालू प्रसाद के गुंडों ने किया। इससे बड़ा शर्मसार कुछ नहीं हो सकता। पुलिस इसकी जांच कर रही है, एसआईटी का भी गठन किया गया और एक एक पर कार्रवाई करने का काम किया जाए। लेकिन ये लोकतंत्र के लिए काला अध्याय है। पूरे बिहार में 40 सीट पर चुनाव हो रहे हैं, लेकिन दो सीट जहां पर लालू जी का परिवार चुनाव लड़ रहा हो वहां हिंसा के बल पर, गुंडागर्दी के बल पर चुनाव जीतना ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लालू प्रसाद जी 2005 के पहले के बिहार के तरफ ले जाना चाहते, जहां वो भूत कैप्चरिंग करके चुनाव जीतते थे, बिहार के लोकतंत्र को संसार करने का काम करते थे।
राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा 27 जून से 30 जून तक होगी। इसके लिए प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए एक ही पाली में अलग अलग तिथियों को परीक्षाएं होंगी। इधर राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की छुट्टी मंजूर कर ली है। वे 3 जून से 30 जून तक अवकाश पर रहेंगे। उनके स्थान पर शिक्षा विभाग का कार्यभार मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ एस सिद्धार्थ देखेंगे। बक्सर के नवानगर में तेज हवा के कारण एक ऑटो रिक्शा पर पेड़ गिर जाने से दबकर एक महिला की मौत हो गई। पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत सब्जी मंडी के पास पुलिस ने छापेमारी कर 6 अपराधी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अपराधियों के पास से पिस्तौल और बड़ी संख्या में कारतूस बरामद किए गए हैं। गया जिले में भीषण गर्मी के मद्देनजर विभिन्न ट्रैफिक पोस्ट पर तैनात पुलिस कर्मियों को उनके कार्यस्थल पर छादी की व्यवस्था की गई है। उन्हें ORS और शुद्ध जल पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। राजधानी पटना समेत राज्य के दक्षिणी हिस्सों में मौसम शुष्क बना हुआ है। रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, बक्सर, भोजपुर समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में कई स्थानों पर पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी और पूर्वी भागों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक SK पटेल ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी भागों में कई स्थानों पर गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना है। इस दौरान कुछ स्थानों पर वज्रपात भी हो सकता है।
आज के नवीनतम न्यूमेरिकल मॉडल के अनुसार बिहार के उत्तर एवं पूर्वी इलाकों में गरज चमक के साथ मौसमी गतिविधि होने का पूर्वानुमान है। बाकी क्षेत्रों में शुष्क मौसम रहेंगे, बादल बन सकते हैं। गरजने वाले बादल के साथ कहीं कहीं धूल भरी आंधी आ सकती है। दक्षिण पश्चिमी भाग में उमस भरी उष्ण तापमान रहेंगे।
विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून अपनी सामान्य गति से आगे बढ़ रहा है, जिसके अपने नियत समय पर 15 जून से पहले ही राज्य में प्रवेश करने की उम्मीद है। और अब अंत में मुख्य समाचार। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित। अरुणाचल में भाजपा ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। सिक्किम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग की पार्टी SKM की वापसी। लोकसभा चुनाव को लेकर 4 जून को होने वाली मतगणना के लिए तैयारियां जोर शोर से जारी। भाजपा सांसद रामकृपाल यादव पर हमले की जांच के लिए SIT का गठन, एक आरोपी गिरफ्तार। और राज्य के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में हुई बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।